तारा ने थैंक्स कहकर बॉटल पकड़ ली। विनित मालती की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगा और मालती उसको घूरने लगी। तभी तारा मालती से बोली, ओए तुम्हें मॉम बुला रही है तुम्हारी। मालती, मम्मी। विनित, मम्मी मॉम एक ही होती है। मालती, पता है। और वो वहां से चली गई। विनित हंसने लगा। तारा ने विनित की ओर देखा, क्या हुआ? विनित, कुछ नहीं, पानी पियो, ठंडा पानी। मालती जाते जाते किचन के दरवाजे पर रुकी, एक नज़र मुड़कर तारा और विनित को देखा और फिर वहां से चली गई। उसी शाम मेहंदी की रस्म की तैयारी हो चुकी थी। सब हॉल में ही जमा थे सिवाय अयांश और आरवी के। हॉल रस्म के अनुसार सजा हुआ था, जो कि बड़ा प्यारा लग रहा था। मेहंदी की रस्म का सेटअप क्या, सबका ड्रेस गेटअप भी जबरदस्त लग रहा था। वर्तिका और अभी सबके बीच आ चुके थे। अभी ने हरा सिल्क कुर्ता चूड़ीदार पहन रखा था, वहीं वर्तिका ने सेम कलर का फ्लोरल लहंगा और फ्लोरल ज्वेलरी डाल रखी थी। दोनों बड़े अच्छे लग रहे थे। दोनों की मेहंदी लग रही थी। आमने सामने बैठे एक दूसरे की ओर देखते मुस्कुरा रहे थे। मालती तारा उनके साथ थी। जिया बीच में ढोलपेटी पर नाच रही थी, जिसे शांति जी बजा रही थी, और उनका साथ दे रहा था विनित, जो साथ साथ फोटो क्लिक और मेहंदी का फंक्शन शूट भी कर रहा था। बाकी सब दिनकर जी, अनिकेत जी, शंकर जी, संयम वहीं बैठे लुत्फ उठा रहे थे। रामू काका, राधे ने खाने पीने का मोर्चा संभाला हुआ था। माहौल पूरा जमसा गया था। बस कमी थी तो अयांश और आरवी की, जो किसी भी वक्त आने वाले थे, पर कब किसी को नहीं पता था, पर इंतजार सबको था। दोनों अपने रूम में थे। आरवी आईने के सामने खड़ी थी, वाइट अनारकली लहंगा पहने, पूरे लहंगे पर गहरे हरे रंग की बारीक कढ़ाई और रेशमी धागों से फूल पत्तियों के डिजाइन भी बने हुए थे। गहरा हरा स्लीवलेस ब्लाउज था, हैवी दुपट्टा जो कि कंधे पर सेट था। उस दुपट्टे पर भी सुंदर कढ़ाई थी और गोटापट्टी बॉर्डर के साथ मोती की लटकनें भी थीं। ड्रेस से मैचिंग फ्लोरल ज्वेलरी, खुले बाल, परफेक्ट मेकअप, बड़ी खूबसूरत लग रही थी आज आरवी। इतनी खूबसूरत कि अगर वो खुद को गौर से देखे तो वो अपनी खूबसूरती में फंस बैठे कि हाय, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है कि उसके सामने पूरी कायनात कुछ भी ना लगे, या फिर यूं कहो कि कायनात पर भारी पड़ जाए। ऐसी कयामत लग रही थी। जिसका गवाह था अयांश मेहरा, जो वहीं पर खड़ा था आरवी के बगल में, जिसकी नज़रें आरवी से हट नहीं रही थी। वो आरवी को निहारे जा रहा था। उसकी आंखों से साफ बयां हो रहा था कि उसकी बीवी से खूबसूरत कुछ नहीं, सब फीका है। चांद भी बेनूर है उस चांद के आगे, जो सिर्फ उसका है, जो बेदाग है, जो सबसे सुंदर है, जिसका दीदार करते वो खुश हुआ जा रहा था। वहीं आरवी खुद को कभी आईने में देखती, कभी मुंह बनाती अयांश की तरफ, जिसका उसे देखना उस पर निखार ला रहा था। तभी आरवी ने अयांश से नजरें हटाकर खुद को एक बार फिर आईने में देखा। चेहरा ही देखा कि वो चिढ़ गई और अयांश से बोली, बख्श दीजिए, पहले ही आपकी मोहब्बत ने हमारी हालत ऐसी कर दी कि हमें बाहर जाने में शर्मा रही है। अब आप हमारी हालत और खराब कर रहे हैं, हमारे हाथ पैर फूल रहे हैं। मिस्टर मेहरा, इतना तो मेकअप भी निखारता जितने हम आपके चलते निखरते जा रहे हैं। कि तभी अयांश आरवी के पीछे हुआ और उसे पीछे से बाहों में भर चेहरा कंधे पर टिकाते बोला, ये तो शुरुआत है वाइफी, अभी तो मोहब्बत का परवान चढ़ना बाकी है। शिद्दत दीवानगी भरे लहजे में, वैसे काफी असरदार हूं मैं, बोलते अयांश ने आरवी के गाल चूम आईने की तरफ इशारा किया। आरवी ने खुद को देखा, चेहरा और लाल पड़ गया। आरवी ने उसी पल चेहरा हाथों से ढक लिया। अयांश ने उसी पल मुस्कुराते आरवी को अपनी तरफ घुमाया, धीरे धीरे चेहरे से हाथ हटाए। वाइफी, अभी मैंने ज्यादा कुछ किया ही नहीं, अभी से तुम्हारा ये हाल है, आगे क्या होगा? आरवी शर्माते अयांश के सीने से लग गई और गहरी सांस भरते बोली, मैं मर जाऊंगी। अयांश ने उसे बाहों में भरा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मुझे जीना है तुम्हारे साथ, हर पल हर दिन, मुझे नहीं जाना सबके सामने। क्यों? सबको पता चल जाएगा, हम सबकी तरफ देखेंगे तो सब जान जाएंगे, आरवी बोल रही थी। अयांश ने उसे दूर कर उसका चेहरा हाथों में भर लिया। क्या जान जाएंगे, यहीं की कोई किसी को इतना कैसे चाह सकता है कि उसका असर घंटों तक न छूटे। तुम रंग चुकी हो मुझसे, घंटों क्या, मेरा असर कभी न छूटेगा, चाहती भी नहीं छूटे, पर शर्म आ रही है, उसका क्या? एक सोल्यूशन है मेरे पास। क्या? तुम मेरे बारे में सोचना, अयांश आगे बोलता उससे पहले आरवी बोल पड़ी, फिर तो और स्यापा होगा, रहने दीजिए, अपना सोल्यूशन आपके पास रखिए। सुन तो लो, मेरे कहने का मतलब है, तुम सोचो जो है मेरे लिए, मेरी मोहब्बत को सरेआम आने दोगी तो नजर लग जाएगी, जो तुम लगने नहीं दोगी। जो तुम्हारी ये अदा है, ये हया है, ये सिर्फ मेरे लिए है, जो हमारा है उसे मुझे नहीं लगता तुम किसी और को नजर आने दोगी। जितना फर्क तुम्हें मुझसे पड़ता है उतना किसी से नहीं पड़ता है, तो क्यों सोच रही हो इतना, परेशान होने की जरूरत नहीं, जो मुझे नजर आ रहा है वो सिर्फ मुझे ही आ सकता है नजर। और अयांश मेहरा की वाइफ हो तुम, खुद को संभालना तुम्हें अच्छे से आता है, सो आरवी चतुर्वेदी मेहरा टेंशन मत लो, जैसे ही कमरे से बाहर कदम रखोगी नॉर्मल हो जाओगी, शर्माना छोड़ो, नीचे जाओगी तो शर्म भी नहीं आएगी, जाओ मेहंदी की रस्म करो। ये सुनकर आरवी मुस्कुरा दी। उसने गहरी सांस ली और एक पल खुश होकर ओके बोला और दूसरे ही पल अयांश को अंगुली दिखाते बोली, बट आप दूर ही रहना मुझसे, खबरदार जो मेरे पास आए। अयांश ने कमर में बाहें फंसाकर आरवी को खुद से सटा लिया। क्यों? आरवी ने उसे घूरा। क्या क्यों? आप जब पास आते हैं तो हमारा बस ना चलता, हम आपके वश में आ जाते हैं, कंट्रोल खो देते हैं, आगे बोलते अयांश बोल पड़ा। ऐसा नहीं है, कंट्रोल नहीं खोती तुम, आज ही देखा मैंने कितना कंट्रोल है तुम्हारा खुद पर, चाहे मैं कितना भी पास आऊं, कुछ भी करूं। बोलते वो अपना चेहरा आरवी के पास लाने लगा। आरवी ने उसे खुद से दूर धकेल दिया। बहुत बुरे हैं आप, वो हम ही जानते हैं कंट्रोल कैसे किया, पर उसका बदला जरूर लेंगे, भूलेंगे नहीं, ना आपको भूलने देंगे। पास आकर भी पास आने से रोका था ना, अब आप आना पास हमारे, और हाँ लैपटॉप उठाइए और अपना काम कीजिए, रूम से बाहर मत आना। वैसे भी रूम से बाहर क्यों आएंगे, आपको कौन सी मेहंदी लगवानी है? मेहंदी तो मुझे लगवानी है, सो मैं जा रही हूँ, बाय। बोलकर आरवी पैर पटकते रूम से चली गई। उसके जाते ही अयांश ने गहरी सांस ली, कानों को सहलाया और मुस्कुरा दिया। क्या होगा मेरा, इस लड़की के साथ पूरी जिंदगी बिताने वाला है अयांश मेहरा, इस लड़की के साथ। पल भर में छुई मुई से सुई बन गई, पर चलो अच्छा है, ऐसे से मेहंदी की रस्म कर पाएगी, मेरे नाम की मेहंदी लगवाएगी, मेरे नाम की। बोलते अयांश के चेहरे पर ढेर सारा सुकून चला आया। उसने खुद को आईने में देखा, वो ब्लश कर रहा था। थोड़ी देर पहले जहां आरवी ब्लश कर रही थी, अब उसका नंबर लग चुका था। वो बालों में हाथ फेरते हंस पड़ा। तुम्हारी मौजूदगी इतना असर डालती है मुझ पर, जब तुम मोहब्बत करने पर आती हो तब क्या होता है मेरे साथ, इसकी तुम्हें भी खबर नहीं, तुम्हें भी खबर नहीं। आरवी को अयांश के नाम की, वर्तिका को अभी के नाम की और अभी को वर्तिका के नाम की मेहंदी लग चुकी थी। मेहरा सदन हंसी ठिठोली नाच गाने से गूंज रहा था। आरवी की नजरें बार बार ऊपर कमरे की तरफ जा रही थी। अयांश ऊपर रूम में जो था, नीचे आना तो दूर, वो एक बार भी रूम से बाहर नहीं आया था। अयांश मेहंदी नहीं लगवाएगा, ये बात उसने पहले ही क्लियर कर दी थी। फिर किसी और ने तो क्या, आरवी ने भी जिद ना की। कदम भी आरवी के चाह रहे थे कि अयांश की तरफ बढ़े, पर पैरों में लगी मेहंदी उसे रोक रही थी। दिल के हाथों मजबूर होकर कोशिश भी की, पर डांट सुननी पड़ गई, फिर कोशिश भी छोड़ दी, क्योंकि सुजाता चाची ने उसे चेतावनी दी थी, मेहंदी सूखने से पहले यहाँ से उठी तो मार खाएगी। प्यार से समझा लिया, अगली बार मार ही पड़ेगी, तो उसने मान ली बात। और वो भी नहीं चाहती थी उसकी मेहंदी खराब हो, शादी वाली मेहंदी थी ना, शादी वाली खास भी।
आरवी ने हाथों पर मुस्कुराती नजर डाली और अयांश का नाम मेहंदी के बीच हथेली पर सजा देखकर गुनगुनाने लगी। थी तमन्ना तुम्हें दूल्हा बनाए, तेरे नाम की मेहंदी अपने हाथों में सजाए। दूर से ही मेहंदी चूमते बोली, हो गई तमन्ना पूरी, लग गई आपके नाम की मेहंदी। हाथों में मैंने आपके बहुत सारे नाम लिखवाए हैं, अब हैं ही इतने नाम, लिखवाने तो थे ही, पर हाँ नाम ढूंढते ढूंढते आपको नानी याद आने वाली है मिस्टर अयांश मेहरा। नाम ढूंढते ढूंढते आपको नानी याद नहीं दिला दी तो मेरा नाम भी आरवी चतुर्वेदी मेहरा नहीं। आरवी की ये बातें सब सुन लेते हैं और हंस पड़ते हैं। आरवी ने सबकी ओर देखा तो पहले शर्मा गई और फिर वो भी हंसने लगी। तभी विनित बोला, अयांश सच में नीचे नहीं आएगा क्या आरवी आज? क्रमशः